समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश विदेश के समाचार जानेंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, व्यापार जगत खेल जगत की हलचल भी रहेगी, बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस अंक में। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
हेलो प्रियंका, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड ऑफ कोर्स वी बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो, हम लोग चलेंगे देश की परिक्रमा में, जानेंगे क्या कुछ खास स्टोरीज हैं फ्रॉम आवर डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वी हैव द लेटेस्ट न्यूज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे इन डेटलाइन इंडिया, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। बट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट प्रियंका।
बिल्कुल।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi says NDA government has lifted 25 crore people out of poverty in the last 10 years.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आश्वासन दिया, पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की जाएगी।
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए।
6,000 tourists stranded due to heavy snowfall rescued from Atal Tunnel and Dhundi in Himachal Pradesh.
राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग आज से रांची में शुरू।
And in women's T20 cricket match between India and Bangladesh underway in Sylhet. And Priyanka, like every day, we bring a very important topic in to discuss in our segment Dateline India. And today we are going to discuss about climate change. क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज जो है what has happened in Himachal Pradesh or what is happening regarding heat wave conditions, बहुत सारी उथल पुथल हो रही है।
मतलब आप दुबई का हिसाब लगाए कि ऐसा लग रहा था कि इतने वर्षों की जो बारिश है एक ही मतलब कुछ ही दिनों में दुबई में हो गई। आप पूर्वी अफ्रीका की ओर देखें, बाहर जैसी स्थिति बनी हुई है, तो खाली हम भारत ही नहीं पूरे विश्व का अगर हाल देखें तो क्लाइमेट चेंज ने पूरा हाल और जो पर्यावरण का जो स्वरूप है वो बदल दिया है।
यस, बिकॉज कह सकते हैं कि इंसान की फितरत कभी भी बॉर्डर्स से तो महदूद होती नहीं है, इंसान की फितरत में है दैट वी टेक केयर आर नेचर फॉर ग्रांटेड, सो दैट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड नाउ उसका खमियाजा हम ही लोग भुगत रहे हैं।
बिल्कुल। और इस वक्त मुझे वो एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत है, उसकी पंक्तियां याद आ रही हैं कि हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। ये पंक्तियां हैं 1967 की एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत की। 1967 से अगर अब तक सोचे कितना कुछ बदल गया है। आज प्रदूषण के बीच कहां गगन नीला देखने को मिलता है या वसुंधरा कितनी हरी भरी नजर आ रही है। चंद वर्षों में इतना बदलाव क्यों और कैसे आया? शायद हम प्रकृति से दूर चले गए और अपनी असीमित आवश्यकताओं के लिए उसका दोहन करने लगे, जैसे आपने भी कहा।
यस, इनफैक्ट प्रियंका, जो आपने पंक्तियां पढ़ी, जो वो गाना है, तो आई थिंक नाउ फॉर फ्यूचर जनरेशन, सैडली इफ वी डोंट एक्ट वेरी प्रोएक्टिवली नाउ, दीज विल ओनली बी पोएट्री एंड लिरिक्स एंड दे वोंट बी अ रियलिटी। बट एज यू नो, आई हर्ड एन इंटरव्यू ऑफ अ वेरी यू नो वेरी रिनाउंड रिसर्चर, ही सेड दैट नेचर इज सो पावरफुल दैट इट विल इवेंचुअली रिक्लेम दी अर्थ। यू नो, अगर हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा करेंगे, प्रलय आएगी, कुछ आएगा एंड इट विल रिक्लेम, बट इट इज द मैनकाइंड हु हैज टू सेव इट।
तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली हम लोगों को ही भुगतना है, तो हम ऐसा आने क्यों दें।
yes.
तो हम अभी अब भी देर नहीं हुई है, अब भी हमें सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जनजातीय जिले में भीषण बर्फबारी के कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ जम जाने के कारण बारा अलाचा के बाहर मनाली लेह राजमार्ग और अटल सुरंग तथा धुंधी के बीच वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बचाव अभियान के तहत अटल सुरंग और धुंधी पर फंसे लगभग 6,000 यात्रियों को रात में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इस बीच भूस्खलन के कारण सिसु के निकट सड़क बंद है, जिसके कारण टेलिंग के जरिए यातायात में परिवर्तन किया गया है। तो मतलब देखिए इससे क्या होता है, जब आवाजाही बंद होती है, जो बेसिक खाने पीने की चीजें हैं और सुविधाएं जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती और इससे महंगाई बढ़ती है, मतलब एक के बाद एक चेन है जो पूरी बिगड़ जाती
है. इट्स अ रिपल इफेक्ट दैट वी ऑल विटनेस. एंड इन हिमाचल प्रदेश जहां पे बर्फबारी ने कह सकते हैं पहर ढाया हुआ है, बट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री यू सी सिवियर हीट वेव इज ग्रिपिंग. सो दीज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आर हैपनिंग विच आर वेरी वेरी हार्मफुल ऑफकोर्स. लाइक द मेट डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट दैट हीट वेव टू वेरी सिवियर हीट वेव कंडीशन विल कंटिन्यू ओवर ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, Bihar and Jharkhand until the 2nd of May. Whereas in South India, heatwave conditions along with hot and humid weather will prevail over parts of Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry during the next 5 days. The IMD has forecast that maximum temperatures will fall by 2 to 3 degrees Celsius over northwest India during the next 2 days. However, they are expected to rise by 2 to 3 degrees Celsius over central India during the next 5 days. So, itne contradictory aap dekh rahe hain ki weather conditions ho rahi hai, isn't it? Whereas in Telangana, heatwave conditions are prevailing in parts of Nalgonda district, with highest maximum temperatures being recorded at over 45 degrees Celsius. The Hyderabad Meteorology Center has issued an orange alert to several districts in the state, forecasting that maximum temperatures may go up further in the next 5 days. And Priyanka, we also have a report from Lakshmi. Let's listen to it.
Several areas in various districts across Telangana state are experiencing unusually high temperatures, with Mattur in Nalgonda district recording a blistering 45.5 degrees Celsius today. Other areas including Mangapet in Mulugu district recorded 45.1 degrees Celsius currently. Several other places in Nalgonda, Mulugu, Bhadradri Kottagudem, Siddipet, Khammam, Manchiryal and Nizamabad districts also witnessed over 44 degrees Celsius. Within the Greater Hyderabad Municipal Corporation limits, various locations like Sheikhpet, Kukatpally, Rajendranagar reported maximum temperatures as high as 43 degrees Celsius. Meanwhile, the State Public Health and Family Welfare Department has asked the public not to come out unless it is very important. Lakshmi, Akashwani News, Hyderabad.
और इस बार तो मौसम विभाग ने कहा है कि जो हीट वेव है और ज्यादा दिन तक चलने वाली है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. पानी का सेवन अच्छे से लें, जब धूप में निकलें तो ध्यान रखें छाता या अपने आप को कवर करके जाएं. और अगर हम देखें, हमने जैसे हीट वेव की बात की, तो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में जंगल की आग की स्थिति में सुधार हुआ है. सभी विभाग अब हाई अलर्ट पर है और वन विभाग आग की घटनाओं पर निगरानी तथा रोकथाम के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है. इसके अलावा वन क्षेत्र में आग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कदम उठाए जा रहे हैं. नैनीताल जिले में भी आग पर प्रभावी तरीके से काबू पाया गया है.
So we can say, Priyanka, that all these are examples of climate change that the world is facing nowadays. And we all know that climate change is caused primarily by, thanks to us, the humans who kind of have indiscriminately used nature, in fact abused nature, I would say. And the emission of greenhouse gases and deforestation is a major reason for climate change. And kehte hai na ki itne zale, it's also a travesty that, you know, every year such big conferences by United Nations is being organized, like COP26, COP27, COP28. But what we see is that, you know, all these leaders who are coming to these conferences and pledging so many things that we will reduce carbon footprints, we'll try to contain the temperatures, but they themselves are using those cars to come, those jets to come to those conferences that are leaving such a lot of carbon footprints. So this is a travesty. So what we need is not just mere lip service, but also activity and action, isn't it?
देखा जाए तो अगर भारत है बहुत ही एक जिम्मेदाराना देश के रूप में काम कर रहा है इस दिशा में, चाहे हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, हम आकाशवाणी की बात करें सायरा, तो हमारे यहाँ पर अब एक जो बेड़ा आया है इलेक्ट्रिक कार्स का, तो हम पेट्रोल की बजाय हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर डिपेंडेंट है. और उससे क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और इससे जो प्रदूषण की मात्रा है उसमें कमी आएगी. मतलब धीरे धीरे अगर हर कोई एफर्ट अपना करे और इसमें योगदान करे, तो जरूर हम इस जो कार्बन उत्सर्जन की समस्या और ग्रीन हाउस की समस्या पर काबू पा सकते हैं. और विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है, हम जानते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है. आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जलस्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये स्पष्ट करते हैं कि ये समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार करने को है।
Increased frequency and intensity of extreme weather events impact habitats, species distribution and ecological balance. Melting glaciers and polar ice caps threaten marine ecosystems and contribute to sea level rise. And if we talked about greenhouse gas emissions, well, burning fossil fuels, coal, oil and natural gas releases carbon dioxide into the atmosphere. Industrial activities, transportation and deforestation contribute to the GHG emissions, and not just switching to electric vehicles, of course that's very important, but we have to take care of our trees, and that is only having plantation drives won't be effective, because jo already forest, existing forests hai, the definition of a natural forest which has been a forest for 20, 30, 50, 100 of years will have a lot of flora and fauna. If we cut down those, give those land to builders to build houses, and then as a token we have a plantation right, that's not going to solve the problem. Because Joshimath mein humne jaise dekha, so it's very important that kuch jagahon ko so-called development, jisse kehte hain, usse chhod diya jaye. Zaruri nahi, development is not just concrete and mortar. It is also, of course, it is not just also, it is trees and jungles and forests. They are a major part of development, isn't it?
Bilkul, aur hum aapko bataye ki is disha mein jo kuch kadam uthaye ja rahe hain international level pe, jaise Bharat ne antarrashtriya saur gathbandhan jo banaya hai, uski pehal ki hai, usme bhi bahut sare desh jud chuke hain. Iske alawa jalvayu parivartan par antar sarkari panel hai jo is disha mein nirantar prayasrat hai. To dekha jaye to labolabab yahi hai कि हम सबको मिलकर, एक समाज को मिलकर इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है. हर घर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है.
Yes, climate change is posing substantial challenges to both ecosystems and human societies. By understanding its causes and implications and implementing effective mitigation measures, we can work towards safeguarding the environment, ensuring sustainable development and creating a resilient future for generations to come. And now, Priyanka, we have come to that segment jisme hum log mulk ke mukhtalif hisson mein jaate hain and see what are the interesting stories that our correspondents have. So first, ये सिलसिला हम लोग कहाँ से आज शुरू कर रहे हैं प्रियंका?
बिल्कुल, हम सबसे पहले बात करेंगे, सुधींद्र के पास जाएंगे कर्नाटक में, जहां गगनयान जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है हमारा, जो मानव को भेजने की एक कवायद होने वाली है, उस पर बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है.
यस, द जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम इन बेंगलुरु हैज प्रोड्यूस्ड अ स्पेशल स्काई शो ऑन गगनयान स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ इसरो. Our correspondent says that the show exhibited on the big screen dome of the planetarium is leaving the audience spellbound. So we have more details from Sudhindra.
The Jawaharlal Nehru Planetarium in Bengaluru has produced a special sky show on Gaganyaan space flight program of ISRO. It shows in actual dimension the sequences and technical expertise involved in sending Gaganyatri to outer space and how they will go around the Earth and re-enter atmosphere and drop over sea, and as to how they will be retrieved by our naval forces. The sequence of events are reconstructed as they will be during execution by ISRO. The show is aptly named as Indian Space Odyssey, sounding rockets to Gaganyaan. The 30-minute show traces the genesis and evolution of the Indian space program and its various achievements through a conspicuous visual treat with the help of animation. It discusses the training of astronauts, Giant Human-Rated Launch Vehicle Mark III and the Gaganyaan spacecraft, their meticulous preparation for the launch, and the way Indian astronauts will undertake their exciting journey to orbit and safely return to Earth. The show, both in English and Kannada, has impressed the audience. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और एक तरफ हम आसमान में जा रहे हैं, अंतरिक्ष की जो उड़ान है उसको छू रहे हैं, और दूसरी तरफ अब भी हम अपने एक तरह से जड़ों से जुड़े हुए हैं. और देखिए, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में लौकिक सौहार्द के लिए वैदिक ज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई. क्या रहा इस संगोष्ठी में, आइए सुनते हैं अपने संवाददाता रितेश कपूर से.
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में लौकिक सौहार्द के लिए वैदिक ज्ञान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में कल मुख्य अतिथि के रूप में केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य वैदिक ज्ञान की गहन अंतर्दृष्टि और लौकिक सौहार्द को बढ़ावा देने में वेदों की प्रासंगिकता पर चर्चा रहा। संगोष्ठी में वैदिक ज्ञान द्वारा प्रस्तुत वास्तविकता के समग्र सर्वांगीण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर देश भर के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा विचार साझा किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि आजादी के बाद देश में मानव अधिकार को लागू किया गया, जबकि वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही मनुष्य की गरिमा को विशाल रूप से परिभाषित किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक आदर्श हमारी परंपराओं से ही निकले हैं। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और सौहार्द के लिए वैदिक परंपराओं को आचरण में शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि दुनिया भारत से सबक ले। उन्होंने भारत की लंबे समय तक की गुलामी को भी अपनी विरासत से अनभिज्ञता का नतीजा माना। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी गुलामी भी इसी का नतीजा था कि हम अपने मूल्यों से पथ भ्रष्ट हो गए थे। इस संगोष्ठी में देश भर से भाग ले रहे वक्ताओं ने वैदिक ज्ञान और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और आज के समाज में वैदिक विचारधारा की जरूरत पर बल दिया। विशेषज्ञों ने माना कि प्राचीन शिक्षाएं वर्तमान जीवन शैली को सामंजस्यपूर्ण बनाने की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। संगोष्ठी के दौरान एक से अनेक और अनेक से एक जैसे वैदिक सिद्धांत सहित प्रत्येक जीवात्मा में समानता जैसे मूल्यों को वर्तमान में विश्व शांति और सौहार्द के लिए अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया। यूनिवर्सल वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट थिरुवन्नामाली तमिलनाडु और संथीगिरी रिसर्च फाउंडेशन थिरुवन्नामाली केरल के सहयोग से ये राष्ट्रीय संगोष्ठी शिमला में आयोजित की गई। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
And now we go further up north to Jammu and Kashmir, where the fate of 22 candidates has been locked in the EVMs as 72.04% voters exercised their right to franchise in 5 Jammu Riyasi Lok Sabha constituency, where polls were held on Friday along with 88 other seats in the second phase of elections. So we have more details from our correspondent Gulshan Raina. Let's listen to him.
The Jammu parliamentary constituency spread over three districts including Jammu, Samba and Riyasi and one assembly constituency of Rajouri district namely Sundarbani Kalakot with a total number of 17,81,545 voters including 9,21,462 male, 8,60,055 female and 28 transgender. The election commission had set up 2,416 polling stations including 158 along the international border and line of control in 18 assembly segments across the constituency. More than 15,000 polling officials were deployed on poll duty, while security arrangements were foolproof to ensure free, fair and peaceful elections. A contingency plan was also worked out to ensure no disruption in polling along the Indo-Pak international border. This was the first major electoral battle after the abrogation of Article 370 and the bifurcation of the erstwhile state into two union territories on August 5, 2019. The polling began at 7 a.m. in all the four districts of Jammu, Samba, Riyasi and Kalakot Sundarbani Assembly constituency of Rajouri district and remained peaceful with no untoward incident reported. Earlier polls was held in four Udhampur Kathua seat on April 5, recording a voter turnout of more than 68%. After the Jammu parliamentary constituency, the Anantnag Rajouri constituency will go on polls on May 7, followed by Srinagar on May 13 and Baramula on May 20. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
And now in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profiles giving details of number of phases, dates of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents.
बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बदायूं की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। बदायूं क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी की गहरी पकड़ है। 2019 के चुनाव में 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती थी। यहां इस बार भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। उधर समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव को INDI गठबंधन से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 3 महिलाओं सहित 8 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए सुनते हैं संवाददाता की यह रिपोर्ट।
बदायूं लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें गुन्नौर, बिसौली, सहसावान, बिलसी और बदायूं शामिल हैं। यहां कुल 24,09,905 मतदाता 7 मई को 11 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इनमें 12,92,286 पुरुष मतदाता, 11,17,516 महिला मतदाता और 103 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट से पहले शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। खास बात यह है कि इस बार भाजपा और सपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सपा ने आदित्य यादव तो भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्या को टिकट दिया है। वहीं बसपा शेखपुर के पूर्व विधायक मुस्लिम खां को उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस सीट पर जीत बरकरार रखने के लिए जमकर प्रचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह यहां जनसभाएं कर चुके हैं। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जनसभाएं आने वाले दिनों में यहां प्रस्तावित हैं। इनके अलावा अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
एंड वी आल्सो हैव अ रिपोर्ट ऑन पोरबंदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन गुजरात।
Porbandar Lok Sabha constituency, located in western part of Gujarat, is renowned for the birthplace of Mahatma Gandhi. Established in 1977, it has been a significant political seat in Saurashtra region. Over the years, Porbandar has been represented by various members of parliament from various political parties like Congress, Janata Dal and BJP. Ramesh Bhai Dhaduk from BJP was elected from this seat in both 2014 and 2019 Lok Sabha polls. In this election, BJP has fielded a senior leader and Union Minister Mansukh Mandaviya against senior Congress leader Lalit Vasoya. There are total 11 candidates are in the fray on this seat, including 6 independent candidates, whose political fate will be decided by 17,18,000 voters in this constituency. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
On the 30th of April 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chaki attacked the carriage which they thought was carrying the infamous magistrate Kingsford.
Kingsford was unpopular for passing harsh and cruel sentences on young freedom fighters of Bengal. He was also noted for inflicting corporal punishments on Indians. This led to rage against the magistrate Kingsford. The revolutionary independence activists planned to take revenge.
Prafulla Chaki and Khudiram Bose were chosen for the assassination of Kingsford, who was posted as magistrate in Muzaffarpur. Khudiram Bose and Prafulla Chaki adopted different names to escape the British intelligence officers. Khudiram took the name of Harin Sarkar and Prafulla Chaki disguised himself in the name of Dinesh Chandra Roy. Both the young boys took up residence in a dharamshala. In the ensuing days, Prafulla and Khudiram monitored the activities and daily routine of Magistrate Kingsford. The two revolutionaries successfully hid their identities for over 3 weeks.
Initially, the plan was to throw a bomb in the court, but later it was changed to avoid injuries to civilians present in the court. They decided to attack Kingsford in front of the British Club. Pretending to be schoolboys, they surveyed the park situated opposite the British Club. On the evening of 29th of April, Khudiram and Prafulla were in place to execute their plans. However, on this occasion, they were noticed by a constable.
On the fateful day of the 30th of April, 1908, Kingsford and his wife were accompanying the daughter and wife of another British barrister, Pringle Kennedy, in the park. In the evening, the families decided to leave. Kingsford and his wife were in one carriage, and Mrs. Kennedy and her daughter in another. However, the two carriages were identical. As their carriages reached the European Club, Khudiram and Prafulla ran towards the carriage and threw the bombs.
The carriage was shattered and the Kennedy family sustained terrible injuries. Magistrate Kingsford was lucky to escape the bomb. Khudiram and Prafulla went their own ways to escape capture. While police arrested Khudiram from the Veni railway station in Samastipur district, Prafulla Chaki killed himself before being caught by the police.
Gandhiji shifted to Sevagram Ashram in Wardha on the 30th of April 1934. When Gandhiji started his Padyatra in 1930 from Sabarmati Ashram to Dandi for the salt satyagraha, he had decided not to return to Sabarmati till India attained independence. When Gandhiji was released from prison after 2 years, as India was yet to gain independence, he decided to make a village in central India his headquarters.
And now it's time for business news. Benchmark equity indices erased all intraday gains and ended in the negative today in highly volatile session. The Sensex declined 188.5 points to close at 74,483, while Nifty closed at 22,605. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.49 per barrel.
और आईपीएल क्रिकेट की बात करें तो आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया. और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं. भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के की जयंती है. दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन जैसे विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया था. 1912 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो एक मूक फिल्म थी और देश की पहली फीचर फिल्म थी. वर्ष 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने महिला किरदार निभाया. इससे पहले पुरुष ही महिला किरदार निभाते थे. दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई उसका नाम था गंगावतरण. दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी.
Today we are also remembering Achala Sachdev on her 10th anniversary. An actress of predominantly Hindi cinema, she started her career as a child actor but later on acted in many Hindi films. She later became known for mother and grandmother roles in Hindi films, and most memorable roles of her were of course Balraj Sahni's wife in Waqt and Kajol's grandmother in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Let's listen to that memorable song.
ऐ मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं.
और जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर की आज पुण्यतिथि है. उनका जन्म 4 दिसंबर 1952 में हिंदी फिल्मों के स्टार राज कपूर के घर हुआ था. फिल्मी माहौल में पढ़े बढ़े ऋषि ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी. फिल्म मेरा नाम जोकर में वे बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था. और हमने उनके जितने भी तमाम फिल्में देखी हैं हीरो का किरदार उन्होंने निभाया और चॉकलेटी इमेज उनकी रही है. और उनकी उस दौरान की एक फिल्म अमर अकबर एंथनी का एक खूबसूरत नगमा आपको सुनाते हैं.
पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है. पर्दा नशी को भे पर्दा ना कर दूंगा पर्दा, पर्दा नशी को भे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है. पर्दा है पर्दा.
A very beautiful song of Amar Akbar Anthony. And of course, now moving ahead, we are remembering Pradeep Sarkar on his birth anniversary today. He is best known for directing the film Parimita, for which he also got the National Film Award. Let's listen to this beautiful number from the film.
Dekhi jo baatein hain, baatein jo dil ki hain,
dil mein rakhna piya.
लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर
आंखों से सब कह दिया. पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानना. जिया डोले, हाले हाले, क्यों ये डोले जानना.
पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना. जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू
ना. Now just imagine, एक लड़की नक्चली सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
अच्छा.
और एक लड़का.
और लड़का बड़ा समझदार है ना.
नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उसे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में।
और अब समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका अरोड़ा और सायरा मुश्तबा को दीजिए अनुमति। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। तो श्रोताओं अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 4:30 बजे। दीजिए प्रियंका और सायरा को कार्यक्रम यही सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।